नमस्कार दोस्तों, जिंदगी शांत से में आपका स्वागत है। आप सुन रहे हैं मुझे अपने होस्ट शांतनु सुनील सक्सेना यानी शान को। कोरोना वायरस से पूरी दुनिया में डर का साया है। अब तक लगभग हर देश के लोग इस बीमारी से इन्फेक्टेड हैं। इस तरह का मंजर हम में से ज्यादातर लोगों ने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा होगा, खास तौर पर अपने अपने घरों में कमरों में सिमट के रह जाने वाला ये माहौल हर तरफ अलग अलग तरह से देखा जा रहा है। कहीं लोग अपने को वक्त ना दे पाने की शिकायत दूर कर रहे हैं और कहीं लोग अपनी नौकरियों की चिंता में लगे हैं। कहीं खाने की डिशेस पे रोज नए एक्सपेरिमेंट्स हो रहे हैं तो कहीं खाना जुटाने के लिए कोशिशें हो रही हैं। एक ही समय पर सबके हालात पूरी तरह अलग अलग हैं। खैर, उम्मीद है इस तरह का नजारा हमें काफी कुछ सिखाए और हम सबक लें और अपनी भूल समझें, जिससे कि आने वाला वक्त हम सब के लिए खुशनुमा हो। इस मुश्किल दौर में ये भी जरूरी है कि आप संयम बनाए रखें और अपना मन लगाए रखें। इसलिए इस बार भी गुजारिश है आप सब से कि जैसे ही आप इस बात को सुने, अपनी सारी चिंताओं और परेशानियों को थोड़ी देर के लिए ही सही भूल जाएं और आंखें बंद कर महसूस करें मेरे कहे अल्फाजों को। मेरा और मेरे सह लेखक और लेखिकाओं का मकसद आपको इस मुश्किल भरे दौर में थोड़ा इत्मीनान देने का और आपके चेहरे पे खुशी लाने का है। इसीलिए इस बार कहे अनकहे किस्सों में मैं लाया हूं आपके लिए अपनी खुद की लिखी कहानी, जिसका नाम है मेट्रो सफर और हमसफर, जिसके किरदारों से आपको पहले ही वाकिफ कराए देता हूं। इस कहानी में मुख्य भूमिका में है निखिल और सुकृति। इनके दोनों किरदारों का साथ दे रहे हैं प्रकाश और मधु, जो कि निखिल के माता पिता हैं, सिद्धू जो कि निखिल का अजीज दोस्त है, और दूसरी ओर अशोक और सुमन जी जो कि सुकृति के माता पिता हैं, और चाहत जो कि उसकी सहेली है बचपन से। चाहत और सुकृति की तरह निखिल और सिद्धू का ऑफिस भी एक ही कॉम्प्लेक्स में है और दोनों साथ ही आते जाते हैं दिल्ली NCR की लाइफ लाइन दिल्ली मेट्रो से। तो आइए शुरू करते हैं।
कृपया ध्यान दें, गाड़ी की गति की दिशा में पहला डिब्बा महिलाओं के लिए आरक्षित है। पुरुष यात्रियों से अनुरोध है कि महिलाओं के लिए आरक्षित डिब्बे में ना चढ़ें। ऐसा करना दंडनीय अपराध है।
Attention please. First car in the moving direction is reserved for ladies. Male passengers are requested not to board the coach reserved for ladies. Doing this is a punishable offense.
यार, इनका कितना सही है ना, अपनी खुद की सीट, अपना खुद का कोच। कभी कभी लगता है जैसे लड़की होना कितना सही है। निखिल जो कि अपने एक हाथ में लैपटॉप बैग, दूसरे हाथ में लंच बॉक्स और किसी तरह एडजस्ट की हुई वाटर बॉटल पकड़े हुए था, इस बात को उसने सिद्धू से दबी हुई आवाज में कहा। तो क्यों चिंता करता है काके, तू कुड़ियों से कम है क्या, सिद्धू ने निखिल से मजाक में कहा। चुप कर तू, तेरा बचपन का है ना ये नाटक, कुछ बोलो, अपनी परेशानी बताओ या मन की बात कहो तो तू मेरा ही मजाक उड़ाने लगता है। और क्या करूं, हर समय कुछ ना कुछ, इतना रोता क्यों है तू, सिद्धू ने अपने मजाक को जारी रखते हुए निखिल को मौका ही नहीं दिया बोलने का। मैंने कभी तुझे बोला है कि तू इतना रोता क्यों है, माफ कर दे भाई, गलती हो गई। एक तो इतना सारा सामान, ऊपर से मेट्रो की ये भीड़, और बच भी जाए इंसान तो तेरी ये महान बातें, अब तू चुप हो जा, निखिल ने सिद्धू से शांत रहने का इशारा किया। इस बीच दोनों अपनी बातों में लगे ही थे कि निखिल ने अपना चश्मा एडजस्ट किया और गौर से सामने खड़ी एक लड़की को देखने लगा। देख रहा है मैडम को, अपने खुद का कोच होने के बाद भी ये जनरल कोच में ही सफर करेंगी। भाई मैं बोल रहा हूं, इस रिजर्वेशन सिस्टम ने देश को खराब कर रखा है, निखिल ने खींचते हुए फिर सिद्धू से कहा। वैसे कुछ किया हो या ना किया हो, तुझे जिंदगी में सबसे ज्यादा दिक्कत है, ये तो साफ है, सिद्धू मुस्कुराते हुए बोला। तू कह तो सही रहा है, थोड़ी थोड़ी देर में कुछ ना कुछ दिमाग में कुलबुलाहट होती ही रहती है। बात करते करते निखिल सामने खड़ी सुकृति की बातें सुनने लगा। हो जाता है यार, अब इतनी बड़ी गलती थोड़ी ही है कि उसको ऑफिस से निकाल दिया जाए, सुकृति ने कहा। पर एज यू नो हमारे बॉस कितने अकड़ू हैं, बस एक मिनट नहीं लगाया उसको डांटने में। तो तू क्या चाह रही थी कि इस लापरवाही पे भी उसको कुछ बोला ना जाए? शाहत ने सुकृति से चुलबुले अंदाज में पूछा। मैं क्या चाहूंगी यार, जितने दोस्त बनते हैं सबके सब दिमाग से बिल्कुल भूंदू, अब तुझे ही देख ले। इतना कहते ही सुकृति ने चाहत को देखा और दोनों जोर जोर से हंसने लगे। ये सब बातें सुन निखिल भी खुद को रोक ना पाया और उसकी भी हंसी छूट गई। वैसे सिद्धू, तुम्हारी मैडम है बहुत मजाकिया। अब कौन सी मैडम भाई, सिद्धू ने पूछा। अरे कोई नहीं, तू अपने फोन में लगा रहे। हाँ तो वो तो लगा ही हूं। तुझे भी ना निखिल थोड़ी थोड़ी देर में कीड़ा काटता है। हाँ काटता तो है, कहकर निखिल फिर से हंस पड़ा। इस बीच सिद्धू फिर अपने फोन में बिजी हो गया। अब निखिल थोड़ा और गौर से सुकृति को देखने लगा। आज सुकृति ने पीला सलवार कमीज पहना हुआ था और बेहद खूबसूरत लग रही थी, और उसका बेबाक अंदाज किसी को भी उस पर मोहित कर सकता था। निखिल ख्याली पुलाव पकाने ही वाला था कि मेट्रो अनाउंसमेंट होती है। सुकृति और चाहत आपस में बात करते करते कब निखिल के बराबर से निकल जाती हैं, उसे पता ही नहीं चलता। ओ मेरे शेख चिल्ली, ऑफिस जाना है या नहीं? राजीव चौक आ गया है, सिद्धू ने निखिल से जोर से पूछा। क्या आ भी गया? बहुत जल्दी आ गया आज, भीड़ का धक्का भी पता नहीं चला। पता कैसे चलता, तेरा ध्यान था कब लोगों पर? एक साइड से दूसरी साइड आ गए, जनाब को पता भी नहीं चला। हद है, अब चलें, सिद्धू ने निखिल से ऊंची आवाज में कहा। हाँ भाई चलो। निखिल और सुकृति दोनों ही कनॉट प्लेस के अलग अलग कॉम्प्लेक्स में काम करते थे। जहां निखिल का ऑफिस सुबह 10 से शाम 6 बजे रहता था, वहीं सुकृति का ऑफिस सुबह 10 से शाम 4 बजे तक। निखिल एक प्राइवेट बैंक में मैनेजर था और सुकृति एक बुक स्टोर में मैनेजर की पोस्ट पे थी। इधर मधु जी, निखिल की माता जी जो कि द्वारका में स्कूल टीचर थी, वो रोज अपने स्कूल के कुछ और टीचर्स के साथ मेट्रो से ही वापस घर लौटती। आज जब वो लौट रही थी तो मेट्रो में काफी भीड़ होने की वजह से उन्हें सीट नहीं मिली। वो अपने ग्रुप के साथ गेट्स के बीच वाले पोल से सटकर खड़ी हो गईं। आजकल ये मेट्रो में भीड़ कितनी बढ़ती जा रही है ना, पहले तो सीट मिल भी जाया करती थी, पर अब तो कई बार खड़े खड़े ही सफर करना पड़ता है, मधु जी ने अपने ग्रुप से कहा। फिर एक लंबी सांस ली और अपने फोन चेक करने लगी। उधर आज सुकृति का ऑफिस में मन नहीं लग रहा था, तो उसने सोचा कि वो भी आज जल्दी ही घर चली जाएगी। हाँ क्या हुआ, चाहत सुकृति का फोन उठाते हुए बोली। यार आज ऑफिस में मन नहीं लग रहा, और आज मंडे ही हुआ है, अभी पूरा हफ्ता आना और बाकी है, आज थोड़ा जल्दी घर चलते हैं, सुकृति ने चाहत से कहा। कितना जल्दी वैसे? मैं सोच रही हूँ आज 2:30 बजे ही निकल जाते हैं लंच करके, मैं बॉस से भी बात कर लूंगी। उस अकड़ू से डांट खाना चाह रही है क्या, चाहत ने सुकृति से चुटकी लेते हुए पूछा। ना ना, मुझे कभी नहीं कुछ कहते, सुकृति ने खिलखिलाते हुए जवाब दिया। वाह क्या बात है, चल ठीक है फिर मेट्रो स्टेशन पर ही मिलते हैं। और वो दोनों मेट्रो स्टेशन पर पहुंच गए। वो देख कहां, चाहत ने सुकृति से पूछा। ओहो सामने देख यार, आइसक्रीम खाते हैं, चल। और दोनों आइसक्रीम खरीदने लगते हैं। सुकृति को आइसक्रीम का बचपन से ही बहुत शौक था, और जब कभी भी उसे कोई आइसक्रीम बेचने वाला मिलता तो मानो उसके पैरों में खुद ब खुद पहिए लग जाते। दोनों अपनी आइसक्रीम लेके स्टेशन पर आ ही रही थी कि सुकृति को मेट्रो के आने की आवाज सुनाई देती है। चल 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 हरी अब चाहत, मेट्रो निकल जाएगी। और दोनों प्लेटफॉर्म की ओर भागने लगती हैं। अक्सर रोजमर्रा में मेट्रो का इंतजार करते करते लोग बहुत बेसब्र हो जाते हैं, इतना कि 2-5 मिनट बाद आने वाली मेट्रो अगर इनका इंतजार अगर करना पड़े तो मानो उनकी जिंदगी निकल जाए। भागते भागते जैसे ही दोनों मेट्रो में चढ़ती हैं, उससे पहले ही सुकृति का पैर अपनी सलवार में अटक जाता है और डिसबैलेंस होने की वजह से उसकी आइसक्रीम मधु जी पे गिर जाती है, और मधु जी का सारा गुस्सा जो कि उनको अपने स्कूल के बच्चों पर होता है, भीड़ पे होता है, सुकृति पे निकलता है। आई एम सॉरी आंटी, माफ कीजिएगा, गलती से हुआ। आंटी, मैं कोई आंटी नहीं हूं, आप थोड़ा आराम से नहीं चढ़ सकती? एक तो आपको इतनी तमीज नहीं है कि आप आराम से आए, ऐसा भी क्या जल्दबाजी रहती है आज के बच्चों को, हर चीज में भागना है। तो हो गई ना गलती, अब क्या चाहती हैं आप, क्या करें हम? सुकृति का मूड आइसक्रीम गिरने की वजह से पहले ही खराब हो चुका था, ऊपर से मधु जी से पड़ी डांट ने उसकी आवाज को एक नई बुलंदी दे दी। गुस्सा करते करते मधु जी मन ही मन बड़बड़ाने लगती हैं। चल यार सुकृति, आगे चल, थोड़ा सा यहां खड़े रहना मुश्किल कर देंगी आंटी जी नहीं तो, चाहत ने सुकृति से कहा और उसका हाथ खींच के आगे ले गई। गलती तो मेरी भी थी यार, वैसे आराम से आ सकते थे हम लोग, सुकृति ने चाहत को समझाया। अगर मुझ पर किसी ने गिराया होता तो मैं तो पता नहीं क्या ही करती, आज का दिन ही खराब है। मधु जी आज गुस्से में घर पहुंचती हैं। प्रकाश, निखिल के पिताजी एक रिटायर्ड टीचर हैं और मधु जी का घर आने का इंतजार करते हैं हर रोज। निखिल को संभालने के लिए उन्होंने स्कूल से पहले ही वॉलंटरी रिटायरमेंट ले लिया था। प्रकाश जी एकदम आदर्श पिता थे और एक आदर्श पति भी। क्या हुआ मधु, आज काफी गुस्से में लग रही हो, प्रकाश जी ने मधु जी से पूछा। मैं कहाँ गुस्सा होती हूँ, गुस्सा तो आज के बच्चे होते हैं, गलती भी खुद करें और सामने से बदतमीजी अलग दिखाएं। आप हट जाइए, पहले स्कूल में झेलो, फिर मेट्रो की भीड़ और ऊपर से आज की लड़कियां। मैं कह देती हूँ, अपने निक्कू की शादी हम अपनी मर्जी से ही कराएंगे, मैं जिंदगी भर ऐसे पागलों को नहीं झेल सकती। मधु जी फिर बड़बड़ाते हुए अपने कमरे की ओर चली जाती हैं। और इधर अपने प्रकाश जी बेचारे लगी अपनी रूठी पत्नी को मनाने। मधु जी, मीठी मीठी मधु, अरे मधु सुनो तो सही, क्या है? मधु जी चिड़चिड़ाते हुए कहती हैं, इतना गुस्सा क्यों करती हो बाबा, जैसे तुम चाहोगी वैसा ही होगा मास्टरनी साहिबा, अब तो गुस्सा थूको। वैसे भी आज आता है निक्कू तो बात करते हैं उससे शादी को लेकर, कुछ सोचा भी है उसने या बस दिन रात दुनिया की फिजूल चिंता में ही डूबा रहेगा? सही कह रहे हो, आने दो आज से। बच्चों को पढ़ाते पढ़ाते और उन पर हावी होते होते कब वो उनका व्यवहार बन गया ये उन्हें भी पता नहीं चला। अब वो सबके लिए एक मास्टरनी साहिबा से कम नहीं थी। इधर सुकृति भी कम गुस्से में घर नहीं पहुंचती है, जहां उसका इंतजार कर रही होती हैं उसकी माता जी सुमन, जो कि पेशे से एक सीए रह चुकी हैं और अब रिटायर्ड हैं तो घर से ही थोड़ी बहुत प्रैक्टिस करती हैं। अरे इतनी जल्दी, अभी तो बस 4:30 बजे हैं, सुमन जी सुकृति से सवाल करती हैं। आप क्या चाहती हैं मम्मा, रोज लेट आया करूं क्या? सुकृति ने चिड़चिड़ाते हुए जवाब दिया। अरे ये क्या जवाब हुआ, जल्दी आ गई इसलिए पूछ लिया तुमसे, किस तरह से बात करती हो तुम, सुमन जी ने झल्ला के कहा। यार आप रहने दो, ना बाहर चैन ना घर में, कहां चला जाए आदमी। सुकृति पैर पटक कर अपने कमरे की ओर चली जाती है। सुनते हो सुकू के पापा, सुमन जी अशोक जी को आवाज लगाती हैं। अशोक जी जो कि एक प्रॉपर्टी डीलर और इन्वेस्टर हैं, अक्सर घर पर ही रहते हैं। आया, अशोक जी ने बालकनी से कहा। हाँ बताओ क्या हो गया? हुआ कुछ नहीं, अपनी बेटी को समझाओ कि अपना दिमाग ठीक करे, हर समय चुलबुलापन या गुस्सा या टेढ़े जवाब, ऐसे कैसे शादी के बाद एडजस्ट कर पाएगी? सुमन जी ने अपनी चिंता जाहिर की। तुम हमेशा शुरू हो जाती हो ना, बच्चे ने जरा कुछ कहा नहीं और बस तुम लगी उसको जज करने, बच्ची है आ गया होगा गुस्सा किसी बात पे, ठीक हो जाएगी, हम नहीं समझाएंगे तो कौन समझाएगा उसे, तुम तो जानती ही हो कितना चंचल है उसका मन, हो गया होगा कुछ ऑफिस में आज फिर, अशोक जी ने समझाते हुए कहा। तुम्हारी तो लाडली है, कुछ भी हो जाएगा तुम तो दूसरे लोगों को ही समझाओगे, सुमन जी ने तीखे शब्दों से कहा। ओहो अच्छा जाने दो, मैं देखता हूं, कहकर अशोक जी सुकृति के कमरे में चले गए। कौन? मैं हूं बेटा, पापा। इतना सुनते ही सुकृति ने गेट खोला और अशोक जी के गले से लग गई। क्या हो गया बच्चे को, इतना अपसेट कैसे, आप इतना शांत कैसे रह लेते हैं पापा, तुम्हारी मम्मी के साथ रहते रहते आदत जो लग गई है, इतना कहकर दोनों खूब हंसे। अच्छा तो बताओ क्या हुआ था, अशोक जी ने सुकृति से पूछा और सुकृति ने सब दिन की पूरी दास्तां सुना दी। अब अशोक जी को इस बात पर खूब हंसी आई। आप इतना हंस क्यों रहे हैं अब, सुकृति ने अशोक जी से पूछा। पता है तुम बहुत छोटी थी, होगी कोई लगभग 4-5 साल की, तब भी तुम्हें आइसक्रीम इतनी पसंद थी कि तुम ना मिलने पर खूब गुस्सा हो जाया करती थी। एक बार हम लोग शादी में गए थे और वहाँ आपने गोरखपुर वाले चाचा हैं ना तुम्हारे, उनका बेटा बंटी, तुम दोनों बचपन में खूब खेला करते थे मिलने पर, तो उसने तुम्हें अपनी आइसक्रीम दी पकड़ने के लिए और वो चला गया जरा कुछ और लेने। इतने तुम्हारा दिल मचला और तुमने अपनी तो छोड़ उसकी भी आइसक्रीम खा ली। अब जब वो वापस आया लेने तो तुमने उससे कह दिया आइसक्रीम तो खत्म, और फिर जो वो फूट फूट के रोया वो नजारा आज भी याद है। तो तुम्हारा कोई ये नया नहीं है आइसक्रीम फितूर, बचपन से ही ऐसी उत्साही हो तुम। हम सब की एक आदत होती है कि अगर खुद से जुड़े पुराने अनुभव साझा हो जाएं, तो चाहे कैसी भी स्थिति हो दिल हल्का हो ही जाता है। ऐसा ही कुछ हुआ था सुकृति के साथ भी। इतने में दोनों बातें कर ही रहे थे कि सुमन जी ने आवाज लगा दी, खाना खाने आ जाओ दोनों, चलो पापा खाना खाते हैं, भूख लगी है बहुत। लंच के बाद सुमन जी ने अशोक जी से धीरे से बोला, अब पूछिए ना इससे। अच्छा रुको सुकृति बेटा, ये तुम्हारे लिए कुछ रिश्ते आए हुए थे, एक बार तुम भी देख लो अगर कोई पसंद हो तो। आप लोग फिर से देखने लगे ना, मैंने आपको कितनी बार कहा है कि अभी इंटरेस्ट नहीं है मेरा, जब होगा तो आपसे खुद कह दूंगी, सुकृति ने दोनों को समझाया। पर बेटा हर बार तुम यही कह देती हो, जो रिश्ते भेज रहे हैं उनको हर बार बिना रीजन के मना कर देते हैं हम लोग। अगर तुम्हें कोई पसंद हो तो बता दो, हम उन लोगों से बात कर लेंगे, सुमन जी ने सुकृति से कहा। अम्मा कोई पसंद नहीं है, इट्स जस्ट दैट कि मैं शायद रेडी नहीं हूं अभी, इसलिए किसी अनजाने रिश्ते में नहीं बनना चाहती, और कोई पसंद जब भी आएगा तो सबसे पहले आपको बताऊंगी। ठीक है बेटा, जैसा तुझे ठीक लगे तू कर, बस खुश रहा कर। इधर जब निखिल शाम को थका हुआ घर पहुंचा तो घर का माहौल कुछ बदला हुआ पाया। मधु जी चुपचाप अपने फोन में किसी से चैट किए जा रही थी। क्या हुआ पापा, आज हवा कुछ गर्म सी है। हाँ बेटा सही पहचाना तुमने, आज घर में लू चल रही है, प्रकाश जी ने निखिल से माहौल को मजाकिया मोड़ देते हुए कहा। और बताओ कैसा रहा आज का ऑफिस। क्या बताऊं पापा, वही हेक्टिक था आज सब, तो काफी कस्टमर्स थे तो सारा दिन उसी सब में निकल गया। आप बताइए माँ के स्कूल में तो ठीक है ना सब, वो इनकी क्लास में जो है अमन, उसने तो फिर कोई शरारत नहीं की। नहीं बेटा उसने कुछ नहीं किया, पर थोड़ा बहुत तो लगा ही रहता है, बस आज मेट्रो में तुम्हारी मम्मी के साथ थोड़ी कहा सुनी हो गई। क्या कह रहे हैं आप, माँ को कोई कुछ कैसे कह सकता है, निखिल ने हैरानी से पूछा। इतना पूछने की देर थी कि बस मधु जी के कानों में ये बात जैसे बिजली की रफ्तार से पहुंची। तू पूछ ही मत, आजकल की लड़कियां ना बस लड़ना जानती हैं, गलती भी करेंगी और फिर माफी मांगने में भी उनकी ईगो हर्ट होती है। अरे ऐसा क्या हो गया माँ, आप तो काफी गुस्से में लगती हैं, निखिल ने गौर से मधु जी से पूछा। गुस्सा नहीं हूं, पर सोचती हूँ कि तेरी शादी भी किसी ऐसी ही लड़की से हो गई तो तेरा क्या होगा, तेरा तो जो होगा सो होगा, हम लोग कैसे रह पाएंगे तेरे साथ, मुझसे तो ये सब बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। पापा आज तो हवा तूफानी भी लग रही है, निखिल ने धीमे स्वर में प्रकाश जी को बोला। देखते जाओ बस, प्रकाश जी ने निखिल से चुप रहने का इशारा करते हुए कहा। माँ इतने सालों में स्कूल की वजह से आपने एक डिसिप्लिन फॉलो किया है और हम सब से भी करवाया है, एक जैसा माहौल होने की वजह से आपको आज की जनरेशन की बातें ना समझ आती हों शायद, ऐसा भी तो हो सकता है, आजकल लोग बहुत बदल चुके हैं, चाहे फिर वो बच्चे हों या बड़े। आप बताइए तो सही हुआ क्या, जब निखिल ने ज्यादा जोर दिया तो मधु जी ने अपनी आत्मबीती निखिल को भी सुनाई। क्या नाम था उस लड़की का, हाँ सुकृति, नाम ऐसा और काम बिल्कुल उल्टे, अब कभी मिलेगी तो पूछूंगी कि यही सीखा है अपने स्कूल में। अच्छा बाबा पूछ लेना, अब शांत तो हो जाओ, प्रकाश जी ने उनको समझाते हुए कहा। अच्छा निखिल तुमने अपनी शादी के बारे में क्या सोचा है, एज भी हो गई है तुम्हारी, सेटल भी हो, कोई पसंद है तुम्हें, मधु जी ने निखिल से जानने की इच्छा से सवाल किया। नहीं माँ ऐसे तो कोई पसंद नहीं है, आपको कोई रिश्ता पसंद है क्या मेरे लिए, निखिल ने मधु जी को समझते हुए सवाल किया। सुनते ही मधु जी खुश हुई और बोली, नहीं बेटा अभी तो नहीं, पर हाँ शुरू करने की सोच जरूर रहे हैं, तो सोचा तुमसे पहले पूछ ही लें। अच्छा, देख लीजिएगा माँ, अभी फिलहाल तो कोई नहीं है मेरी नज़र में, कोई मिलता है तो आपसे ज़रूर कहूँगा। अगले कुछ दिन ऐसे ही निकल गए, निखिल सिद्धू के साथ सुबह ऑफिस और शाम में चुपचाप घर। घर वालों ने उसके लिए रिश्ते भी देखने शुरू कर दिए थे। उधर सुकृति के यहाँ भी कुछ यही माहौल था, पर सब कुछ दोनों की मर्जी से हो रहा था तो दोनों में से किसी को कोई परेशानी नहीं थी। ये सिलसिला कुछ हफ्ते ऐसे ही चलता रहा। इस बीच सिद्धू का ट्रांसफर गुड़गांव की एक ब्रांच में हो गया। ज्यादा दूर होने के कारण वो अपने ऑफिस के पास ही एक सेक्टर में शिफ्ट हो गया। अब निखिल मेट्रो में सफर अकेले ही कर रहा था। उसने धीरे धीरे लोगों पे और उनकी की हुई हरकतों पर खासिया नजर बना ली थी। ना किसी से शिकायत कर सकते, ना किसी को कुछ बोल सकते, और लोग हैं कि दिन ब दिन पगलाए जा रहे हैं। निखिल ने मन ही मन खुद से बात करनी शुरू करी। ना किसी को लाइन में लगने की तमीज है, ना मेट्रो में चढ़ने की। अंदर होंगे तो भी धक्का मारेंगे, और उतरते वक्त तो पूछे ही मत जनाब। सिद्धू के बच्चे को भी अभी ट्रांसफर होना था। शेह, और ये मेट्रो कितनी स्लो हो गई है अब। मेट्रो स्लो हो गई है या मेरा टाइम कटना, हे भगवान। वो ये सब बातें कर ही रहा होता है खुद से कि इतने में उसके सामने से फिर से सुकृति और चाहत मेट्रो के एक डब्बे से दूसरे डब्बे घूमते हुए दो डब्बों के बीच वाली जगह जाके खड़ी हो जाती हैं। वो सकपकाया सा देखता रह जाता है। उसे अचानक याद आता है कि ये वही दोनों लड़कियां हैं जो शायद उसने उस दिन भी देखी थी। थैंक गॉड, आज तो कमाल हो गया। चलो थोड़ा तो टाइम पास होगा अब। और निखिल फिर एक बार उस दिन की तरह उनकी बातें सुनने लग जाता है। बातों बातों में चाहत और सुकृति मधुजी के साथ हुए अपने वाक्य पे बात करने लगती हैं। उस दिन अपना हमेशा चूक जाने वाला निशाना भी नहीं चूका। वो कमबख्त आइसक्रीम जमीन पे भी गिर सकती थी, पर नहीं, उससे दूसरे इंसान पर ही गिरना था। किस्मत देख रही है चाहत, जिंदगी में लोग एक से एक मिलते हैं। जब जो चीज होनी होती है तब नहीं होती, पर जब बिल्कुल नहीं होनी होती तब जरूर होती है। मेट्रो भी अब जिंदगी जैसी ही हो गई है मेरी। समझ नहीं आता कि हंसूं या रोऊं। उधर घरवाले हैं कि शादी के लिए जब तब पूछते रहते हैं। कभी कभी तो मन करता है कि किसी भी लड़के से पूछ लूं और घर पे जाके दिखा दूं, लीजिए इससे करा दीजिए शादी। कुछ ज्यादा ही सोच रही हो तुम लड़की, चाहत ने सुकृति को समझाया। हो सकता है यार, पर क्या करें, तू ही बता। इतना गौर फरमाते हुए निखिल को ऐसा लगा जैसे ये चीज वो पहले भी सुन चुका है। सुना सुना लग रहा है ये सब। कहां? अरे हाँ, याद आया, उस दिन माँ भी कुछ ऐसा ही किस्सा सुना रही थी। एकदम डिट्टो वही स्टोरी लग रही है। पर इतनी प्यारी सी लड़की उस तरह से कैसे बात की होगी माँ से, और चांसेस क्या है ये वही हो। खैर, एक बार बात करके देखता हूँ, निखिल ने मन ही मन फैसला किया। वैसे मेरे हिसाब से आपको हंसना चाहिए, निखिल ने आगे बढ़कर सुकृति को मुस्कुराते हुए कहा। आप कौन हैं और मैं भला आपकी बात क्यों सुनूं? जैसे कि सुकृति की बेबाक आदत थी, उसने उसी अंदाज में अपनी बात भी रखी। मेरा नाम निखिल है, और माफ कीजिएगा, मैं आपकी बातें सुन रहा था। जिंदगी और लोगों को लेकर मेरी भी कई शिकायतें रहती हैं, पर रोने से कुछ होता थोड़े है। मुझे देखिए, मैं भी मुस्कुरा ही रहा हूं। तो हम क्या करें, आप मुस्कुरा रहे हैं तो जब हमारा मन होगा तब मुस्कुराएंगे। आपकी राय किसी ने मांगी है क्या? सुको चिल कर यार, आपको क्या चाहिए और क्यों हमारा वक्त जाया कर रहे हैं? चाहत ने बीच बचाव करते हुए अपनी बात रखी। वक्त जाया तो हम सभी कर ही रहे हैं। खैर, मेरा यहाँ आपसे बात करने का एक और मकसद था, वो भी खास तौर पे आपसे, निखिल ने सुकृति की ओर देखते हुए कहा। बताइए क्या बात करना चाहते हैं आप? मेरे हिसाब से तो मैं आपको नहीं जानती, फिर मुझसे क्या बात करनी है? सुकृति के सवालों का सिलसिला बढ़ता ही जा रहा था। मुझे एक मिनट का वक्त दीजिए, मैं समझाता हूं आपको, निखिल ने दोनों से सुनने की गुजारिश की। अभी मैं आप लोगों की बातें सुन रहा था तो मुझे एहसास हुआ कि जो वाक्य आपकी बातों में था वो मैं पहले भी सुन चुका हूँ। फिर मुझे याद आया कि वो मुझे मेरी माँ ने सुनाया था, और वो उस दिन काफी आहत हुई थी आपके व्यवहार से। आप वही हैं ना जिसने उन पर आइसक्रीम फेंक दी थी? सुनिए मिस्टर, जो भी नाम है आपका।
निखिल।
हाँ मिस्टर निखिल, मैंने कुछ फेंका वेंका नहीं था। हम लोग तेजी से आ रहे थे और मेरा पैर गलती से मेरे कपड़ों में अटक गया और मैं मेट्रो में चढ़ते चढ़ते स्लिप कर गई। इस सब के चलते वो आइसक्रीम मुझसे छूट गई और आपकी माता जी के पैर पे गिर गई। तो मतलब आप वही हैं? निखिल ने मन ही मन खुश होते हुए कहा। मैंने जानबूझ के नहीं गिराई, पर वो सबके सामने मुझसे उल्टा सीधा कहने लगी। मैंने सॉरी भी बोलना चाहा उनसे और वो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी, तो मुझे भी गुस्सा आ गया। मैंने भी एक दो बातें बोल दी थी उन्हें। खैर, अच्छा हुआ आप मिले और आपने ये बात छेड़ी। मेरी तरफ से उनसे माफी मांग लीजिएगा प्लीज। मुझे भी कोई शौक नहीं है ऐसे लोगों को आहत करने का। आपका इतना कह देना ही काफी है। थैंक यू, निखिल ने मुस्कुराते हुए कहा। मेट्रो में तो रोज इतने धक्कों में लोगों पे पता नहीं क्या क्या गिरता रहता है। उस दिन तो स्टेशन आने पर मुझे धक्का लगा और मैं ही मेट्रो के बाहर गिर गया प्लेटफॉर्म पर। निखिल के इतना कहते ही तीनों हंस पड़े। इतने में मेट्रो की फिर से अनाउंसमेंट होती है।
ये राजीव चौक स्टेशन है, यहाँ येलो लाइन और रेड लाइन के लिए बदले दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे, कृपया सावधानी से उतरें।
This station is Rajiv Chowk. Change here for yellow line and red line. Doors will open on the left. Please mind the gap.
आप लोगों से बात करके अच्छा लगा। थैंक यू वंस अगेन। मेरा स्टेशन आ गया है, मैं यहीं उतरूंगा, निखिल ने दोनों से कहा। आप ही नहीं, हम भी यहीं उतरेंगे, धक्का मत मारिएगा, सुकृति ने निखिल की चुटकी लेते हुए बोला। अच्छा अच्छा, आप लोग यहीं सीपी में जॉब करती हैं क्या? चाहत ने हाँ में जवाब दिया और उससे पूछा, आपका ऑफिस कौन से ब्लॉक में है? मैं एक्चुअली बैंकिंग में हूँ, मेरी ब्रांच वो इनर ब्लॉक में, जो वो बड़ा बुक स्टोर है ना, वही उसके पीछे है। कहीं आप ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर की बात तो नहीं कर रहे? सुकृति ने निखिल से जानने की इच्छा जाहिर की। हाँ शायद वही है। अच्छा, तो आप HDFC बैंक में काम करते हैं? जी हाँ बिल्कुल, निखिल ने कहा। चलिए अच्छा हुआ आपसे मुलाकात हुई, हमारे ऑफिस के भी अकाउंट्स हैं आपके ब्रांच में, थोड़े इश्यूज भी हैं। उससे पहले सुकृति आगे कुछ बोलती, निखिल ने उससे भरोसा दिलाते हुए कहा कि आप बता दीजिएगा, जो भी इश्यूज होंगे सबका समाधान करा देंगे। इतने तीनों बात करते करते प्लेटफॉर्म पे उतर गए। वहां उन्होंने अपने नंबर्स एक्सचेंज किए और साथ ही में ऑफिस निकल गए। उस रात जब निखिल घर गया तो उसने रात के खाने के बाद मधु जी को अपने दिन में मेट्रो के सफर में हुई सुकृति से उसकी मुलाकात के बारे में बताया। आपको पता है माँ, आज मैं उसी लड़की से मिला जिसकी वजह से आप उस दिन बहुत गुस्सा हो गई थी।
कौन?
मैं कब हुई गुस्सा? अरे माँ, भूल गई क्या, आप उस दिन स्कूल से लौट रही थी और मेट्रो में। अच्छा अच्छा हाँ, वो असभ्य लड़की, कहाँ मिल गई तुझे वो? अरे माँ, मैं ऑफिस जा रहा था तब। कहाँ, क्यों, कैसे, सब छोड़िए, ये पूछिए उसने क्या कहा। आपके लिए एक मैसेज भी दिया है।
मेरे लिए?
और वो क्या भला? उसने कहा कि मैं आपको उसकी तरफ से सॉरी बोल दूं। उसका वो मतलब नहीं था, पर शायद जल्दबाजी और गुस्से में बात खराब हो गई। उसने कहा कि उसका इरादा आपको दुखी करने का नहीं था।
अच्छा जी,
मानो मधु जी का मन ऐसे शांत हो गया हो जैसे सरोवर में पड़ा पानी। देखा माँ, कितने समझदार हैं आजकल के लोग। वैसे अच्छा लगा मुझे सुनकर, कभी दोबारा मुलाकात हो तो मेरी तरफ से भी इसको सॉरी बोल देना। मैंने भी थोड़ा आपा खोके ओवर रिएक्ट किया था और सबके सामने उसकी इमेज खराब कर दी थी। एक बात बोलूं माँ, लोग कितने भी समझदार हों पर आपसे ज्यादा कोई नहीं। अच्छा, अब मक्खन लगाना हो गया हो तो जाके आराम कर ले। ये सुनते ही निखिल मधु जी के गले लग गया। माँ आप कितनी अच्छी हो, चलिए मैं सोने जाता हूँ, गुड नाइट। निखिल के बदले हुए हालातों पर निदा फाजली जी की लिखी कुछ पंक्तियां सटीक बैठती हैं, शायद आपने सुना भी हो। होश वालों को खबर क्या, बेखुदी क्या चीज है, इश्क कीजिए फिर समझिए जिंदगी क्या चीज है। अगले दिन ऑफिस पहुंचने के फर्स्ट हाफ के बाद निखिल का काम थोड़ा हल्का हो गया था। सुकृति को पहली बार देखने के बाद से और आज उससे पहली बार बात करने तक निखिल के मन में उसको लेके एक अलग तरह का एहसास था। वैसे तो उसकी और दोस्त भी थीं
ऑफिस में और फीमेल कोलीग से भी बात हो जाया करती थी, पर सुकृति के बारे में कुछ अलग सा था जो उसे मन ही मन खुशी दे रहा था। इसी बीच लंच के बाद उसने सुकृति को कॉल करने का सोचा।
हेलो, हु इज दिस?
अरे रिमेम्बर, दिस इज निखिल। कल सुबह ही मेट्रो में मिले थे। आई होप आपको डिस्टर्ब नहीं किया। ओह यस, सॉरी आपका नंबर सेव नहीं कर पाई थी तब। नो वरीज, मैंने आपको कॉल इसलिए किया था क्योंकि आज बैंक में थोड़ा काम हल्का है, तो सोचा आपके कुछ इश्यूज के बारे में आप कह रही थी, तो आप फ्री हो तो बैंक आ जाइए, इसी बहाने डिस्कस भी कर लेंगे। सो थॉटफुल ऑफ यू, थैंक यू। मैं अभी आधे घंटे में फ्री हो जाऊंगी, तब आऊं आपके पास। हाँ श्योर, आई विल बी वेटिंग। ऑलराइट देन, सी यू सून, बाय बाय। अक्सर जब हम किसी को पसंद करने लगते हैं तो उसका थोड़ा सा भी समय मिल जाए तो दिल को ऐसी तसल्ली मिलती है कि मानो जैसे सूखी धरती पे सागर उमड़ आया हो। ऐसा ही हाल हमारे निखिल का भी हो रहा था। घड़ी में ठीक आधा घंटा देख लेने के बाद वो व्याकुल थे कि अब तक आई नहीं सुकृति। उधर सुकृति के लिए भी एक अजीब सी ही सही पर एक नई शुरुआत थी। उसने अपनी डेस्क पर ही पहले खुद को देखा, थोड़ा अपना लुक एडजस्ट किया और अच्छे से तसल्ली कर लेने के बाद वो चल पड़ी समस्या का समाधान निकालने। कई बार इंसान बहानों की आड़ में खुद को महसूस हो रही चीजों को छुपाता है। अब तक सुकृति को ये नहीं पता था कि निखिल ब्रांच में मैनेजर है। वो सोच के आई थी कि होंगे कोई अकाउंटेंट या कोई ऑफिस वगैरह, इसीलिए जब वो ब्रांच में आई तो सबसे पहले शुरुआती डेस्क पे देखने लगी। तीन चार डेस्क पे नाम पढ़ने के बाद जब उसे निखिल का नाम नहीं दिखा तो उसने निखिल को फोन किया। मैं तो आ गई हूँ, आप कहाँ हैं?
मैं तो यही हूँ, आप कहाँ खड़ी हैं?
मैं यहाँ काउंटर नंबर 2 नीलेश जी के यहाँ।
अच्छा अच्छा, आप वहां से स्ट्रेट आ जाइए और लास्ट में लेफ्ट साइड पे कैबिन है, उसमें आ जाइए।
सुकृति जैसे ही कैबिन के बाहर पहुंचती है, वहां निखिल के नाम के नीचे लिखा होता है ब्रांच मैनेजर। तो वो कैबिन में घुसते के साथ ही निखिल को बोलती है,
अच्छा तो आप ब्रांच मैनेजर हैं?
हाँ, आपको कोई शक था क्या?
अरे नहीं, मुझे लगा था आप ब्रांच मैनेजर नहीं होंगे, पर्सनैलिटी नहीं रखती ना आपकी वैसी।
मतलब कैसी पर्सनैलिटी नहीं है मेरी? निखिल ने सवाल किया।
मैंने आज तक बूढ़े से ही ब्रांच मैनेजर देखे हैं, ऑनेस्टली बताऊं तो, इसलिए ही कहा आपसे।
चले इस मुलाकात के बहाने आपको थोड़ा यंग मैनेजर तो दिखा।
क्या कह रहे हैं, आप यंग भी हैं?
सुकृति ने मजाक में कहा, जिसपे निखिल को उसकी हाजिर जवाब ही पसंद आई और वो चुपचाप मुस्कुरा दिया। बातों का सिलसिला आगे बढ़ा और समय कब निकल गया दोनों को पता ही नहीं चला। ना काम की बात हुई ना कोई समाधान हुए, पर दोनों को एक दूसरे से बातें करना इतना भा गया कि धीरे धीरे दोनों अक्सर फोन पे बात करने लगे। और अब तो निखिल का मेट्रो का सफर भी आसान हो गया था। जहां सिद्धू की कमी उसे अखर रही थी, वहां उसे एक ऐसा साथी मिल गया था जो उसको समझने भी लगा था और पसंद भी करने लगा था। कुछ महीने ये सिलसिला ऐसे ही चला, पर जहां ये दोनों एक दूसरे के करीब आ रहे थे, वहीं दोनों के घरों में इनके रिश्तों की बात जोर पकड़ रही थी। आपस में नहीं, अलग अलग लोगों से, क्योंकि अब तक दोनों ने अपने इस नए एहसास का जिक्र घर में नहीं किया था। एक तरफ अशोक और सुमन जी सुकृति के लिए बात चला रहे थे, तो वहीं दूसरी ओर निखिल के लिए प्रकाश और मधु जी बात आगे बढ़ा रहे थे। दोनों ने शाम काफी बात करने के बाद फैसला किया कि घर पे इससे पहले बात और आगे बढ़े, परिवारों को आपस में मिलाना सही रहेगा। इधर निखिल ने प्रकाश और मधु जी के सामने अपनी पसंद रखी और उन्हें राजी किया सुकृति और उसके माता पिता से मिलने के लिए। तो उधर सुकृति ने भी अशोक और सुमन जी से अपने दिल की बात रखते हुए उन्हें सारी बात बताई और उन्हें राजी किया निखिल और उसके माता पिता से मिलने के लिए। सैटरडे का दिन डिसाइड हुआ मीटिंग के लिए और जगह थी कनॉट प्लेस से कुछ स्टेशन आगे हौस खास के एक रेस्टोरेंट में। जहां निखिल अपने माता पिता के साथ आने वाला था, वहीं सैटरडे को सुकृति को ऑफिस में कुछ काम था और वो रास्ते में से ही सबको ज्वाइन करने वाली थी। सैटरडे का दिन आया और सुकृति के कहने पर अशोक और सुमन जी ने रास्ते में ही निखिल और उसके माता पिता को ज्वाइन कर लिया था। यहां सुकृति ने जल्दी जल्दी अपना ऑफिस का काम निपटाया और उसकी हमेशा की आदत की तरह जल्दबाजी में ही मेट्रो के लिए निकल पड़ी। इस बीच लगातार निखिल से फोन पे बात भी हो रही थी। जब उसे पता चला कि वो लोग अभी सीपी से ही गुजरने वाले हैं थोड़ी देर में, तो उसने सोचा सबको सरप्राइज करेगी और वही सेम मेट्रो को बोर्ड करेगी। अब क्या था, उसकी गति और बढ़ गई और मेट्रो स्टेशन पहुंचते ही उसका सामना फिर अपनी कमजोरी से हो गया। जी हाँ, सामने फिर आइसक्रीम वाले भैया खड़े थे। क्या करूं, लू या नहीं, ले ही लेती हूँ, सुकृति मन ही मन बड़बड़ाने लगी। जैसे कि अक्सर होता है, इंसान अपनी कमजोरियों से कई बार हार जाता है। सुकृति ने झट से रुपए दिए और अपनी पसंद की आइसक्रीम तुरंत ले ली। फिर क्या था, वही चाल में तेजी और निगाहें प्लेटफॉर्म की तरफ। रोजमर्रा के मेट्रो का सफर करने वालों को मेट्रो के डब्बे किस प्लेटफॉर्म पे किस पॉइंट पर खुलेंगे, ये सब पता होता है। इसी बीच मेट्रो के प्लेटफॉर्म पर आने की आवाज आई और वो प्लेटफॉर्म की तरफ बढ़ने लगी। मेट्रो में आने पर एक बार फिर जल्दबाजी में उसका बैलेंस बिगड़ा, पर अब की बार उसने खुद को और आइसक्रीम दोनों को संभाल लिया। थैंक गॉड, बच गई इस बार, सुकृति ने खुद को संभालते हुए बोला। और सामने ये सब देख रही मधु जी खूब जोर से खिलखिला उठी। ये देख वहां मौजूद निखिल और प्रकाश जी, अशोक और सुमन जी भी हंस पड़े। बस इतनी सी ही थी ये कहानी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। अपने सुझाव और आपको ये किस्से और कहानी कैसे लग रहे हैं जरूर बताएं। आप मुझे फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पे भी लिख सकते हैं, या फिर अगर आप चाहें तो सीधे मेरी वेबसाइट से मुझे संपर्क कर सकते हैं। वेबसाइट एड्रेस है www.shantanusunilsaxenaa.com। इसी के साथ मैं आपका होस्ट शान आपसे अलविदा चाहूंगा और आपसे फिर एक वादा करता हूं कि जल्द से जल्द आपके लिए एक नई कहानी लेके जल्द ही हाजिर होऊंगा अपने इसी शो में जिसका नाम है जिंदगी शान से। तब तक के लिए खुश रहिए, आबाद रहिए, सुरक्षित रहिए। शुभ रात्रि, शब बखैर, गुड नाइट।